ये बयान फरमाइए का काम साहब, आजकल हम ये देखते हैं एक बहुत ही मार्केतुल आरा मसला है और उस बुनियाद पे मुनाजरे हो रहे हैं और बिल्कुल दस्तो गरेबा बहम में नज़र आते हैं उलमा एक तरीके से। वो ये है कि हमारे बाज़ अकाबरीन की किताबों की ऐसी इबारतें हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर तो शिर्क है, कुफर है और ऐसी चीज़ें हैं जो दीन इस्लाम के मुसल्लमा अकायद से हट कर हैं। एक किताब का बड़ा जिक्र होता है अल मुहन्नत, और कहा ही जाता है कि उसके अंदर तो ऐसी चीज़ें थीं और बाकी उलमा ने फिर उनका रद्द किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो माजी के उलमा की किताबों के अंदर लिखी हुई इबारतें हैं और उनके ऊपर आज के दौर में हम बैठ के जब नक़्त करते हैं और ये बताते हैं कुरान की रोशनी में कि देखिए ये लोग तो बड़े लोग क्या बातें करते थे, इसमें सही रवैया क्या है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक तरफ के लोग कुछ बात करते हैं, दूसरे वाले उनकी इबारतें निकाल के ले आते हैं।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। देखिए, ये किस्सा माजी हो गया। हर दौर के अहले इल्म अपने नुक्ता नज़र पेश करते हैं, उसमें बाज़ औक़ात मुनाज़रे भी होते रहे हैं, बहस मुबासे की नौबत भी आती रही है। आप जानते हैं कि तलखियों की भी एक तारीख़ है, वो सिर्फ़ हमारे यहाँ नहीं है, वो आलम अरब में भी है, माजी में भी है। इस तरह की किताबें, इस तरह की तसनीफ़ात, ये सब आपको मुसलमानों की लाइब्रेरियों में मिल जाती है। अहले इल्म इनसे इस्तेफादा भी करते हैं, देखते हैं, उसमें बाज़ बहसों की बड़ी उम्दा तनकी हुई होती है। लेकिन इसको इस पहलू से मौजू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर वो आदमी जो दीन की खिदमत करना चाहता है या इल्म की खिदमत करना चाहता है, उसको चाहिए कि वो जिस चीज़ को दुरुस्त समझता है उसको दलील के साथ पेश करे। जब आप सही बात इस्तदलाल के साथ लोगों के सामने रखेंगे, शाइस्तगी से अपनी बात कहेंगे, तो सही बात अपनी जगह बनाएगी। उसमें आप ये महसूस करते हैं कि लोगों के जहन पर किसी रवायत की तावील में, किसी अकीदे की वजाहत में, कुरान मजीद के किसी आयत के फहम में कोई पहले गलती हुई हुई है, तो अगर आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं, ये पुरानी तसनीफ़ात, पुराने बुज़ुर्गों का काम, तो आप जो इस्तदलाल वहाँ पे बयान किया गया उसकी गलती वाज़े कर दें। अगर नागुज़ीर किसी इल्मी बहस में हो जाए कि आप हवाला दें, तो बस नागुज़ीर हद तक ही देना चाहिए। इनको मौजू बनाने से कोई हासिल नहीं होता, ना ये किताबें ख़त्म होंगी, ना लोग इनसे इज़हार बरात करेंगे, ना इस तरीके से कभी किसी की इस्लाह होती है। सही रवैया ये है कि सही बात जो आपके नज़दीक सही है, जिसके इस्तदलाल पर आप मुतमिन हैं, जिसको आप अपने ज़मीर की आमादगी के साथ कबूल करने के लिए तैयार हैं, आप ख़ुद भी उसे कबूल करें, दूसरों के सामने भी सही इस्तदलाल के साथ रख दें। हमारे दीन में इसमें कोई मसला नहीं। उसकी वजह यह है कि इसकी बिना लोगों के अफकार पर नहीं है, लोगों के अफकार उसमें अपना किरदार अदा करते हैं। यहाँ तो ये है कि या कुरान की आयत होगी, या सुन्नत होगी, या कोई रवायत होगी, वही असल माखज़ है। सहाबा इकराम के आसार होंगे, तो उन चीज़ों की तावील में, तशरीह में, इतलाक़ में किसी जगह गलती हुई होगी, वो गलती आप वाज़े करें। उसके लिए न किसी का हवाला देने की ज़रूरत है, न किसी का नाम लेने की ज़रूरत है, न किसी किताब को मौजू बनाने की ज़रूरत है, वो पूरी बात आप बयान कर दें। हाँ, अलबत्ता ये है कि किसी मौके पर कोई मदरसा फ़िक्र बन गया है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ इल्म कलाम है, या जिस तरीके से तसव्वुफ़ है, इल्म कलाम में अशायरा हैं, मोतज़िला हैं, इसी तरीके से मातुरीदियाँ हैं, तो अगर आपको कभी इस मौजू पर इल्मी काम करना है, तो बस उसमें भी बहुत सलीके के साथ लोगों का अदब मलहूज रखते हुए उनके अफकार का खुलासा लोगों के सामने रख दीजिए, या अगर हवाले भी देने हैं तो दे दीजिए, ताकि एक तस्वीर सामने आ जाए। लेकिन उसके मुकाबिल में जब आप इस्तदलाल करें, तो उसमें हरगिज़ इसकी ज़रूरत नहीं है कि लोगों में इश्तियाल पैदा किया जाए, या उनको इस पर मतनब्बे किया जाए, या उनको माजरत करने या ये इबारतें निकालने की दावत दी जाए। बस इतना बहुत काफ़ी है कि आप ये बताइए कि इस मामले में दीन का मौक़िफ़ ये है, कुरान ये कहता है, सुन्नत में ये चीज़ कायम की गई है, रवायत में ये बात आई है, इसकी सही तशरीह ये है, इसकी सही तफसीर ये है, इसके दलाइल ये हैं, इसको शाइस्तगी के साथ पेश कर दीजिए। तो मेरे नज़दीक यही सही तरीका है। इसके सिवा जो तरीका भी आप इख्तियार करेंगे, उसमें वक्ती तौर पर हो सकता है लोगों के लिए कुछ लज्जत का सामान हो, आखिरुल अमर उसका नतीजा यही निकलेगा कि आप अपने बुज़ुर्गों के एहतराम में भी कमी पैदा करेंगे, और आप उन चीज़ों के साथ उस असबियत को भी बढ़ा देंगे, बजाय इसके कि इस्लाह हो जिनकी आप इस्लाह करना चाहते हैं।
अच्छा, आप इसमें इस्तदलाल पेश किया जाता है कि ये इस तरीके जिस तरह आप बात करते हैं, बिलूम आपका भी तरीका ये है, फ़िक्र ज़ेरे बहस आती है, इस्तदलाल की वजाहत कर दी, कुरान हदीस की रोशनी में अगर कोई गलत आ रहा है तो उसकी भी अपनी फ़िक्र बयान कर दी, लेकिन इससे आम आदमी के अंदर वो जिसको आप कहते हैं کلیئرٹی نہیں پیدا ہوتی جب تک ان کو نہ بتایا جائے کہ جن بابوں کو تم مانتے ہو انہوں نے تو اپنی کتابوں میں یہ لکھا تھا, چشتی یہ فلاں یہ فلاں یہ. تو عام آدمی تو اس وقت تک سمجھتے نہیں. یہ فکری علمی گفتگو تو ایک خاص انٹلیکچوئل لیول کے لوگوں کی ہوتی ہے. عوام کو ہم نے بچانا ہے اس طرح کے عقائد سے, تو وہاں تو کھل کے بیان کیا جائے گا نا.
نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں. میرا تجربہ اس سے بالکل مختلف ہے. میں نے خود ایک زمانے میں بعض تنقیدیں کی ہیں, لیکن آج میری رائے یہی ہے کہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. یعنی اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ صحیح بات کوئی صحیح استدلال کے ساتھ واضح کریں, اس میں کچھ وقت زیادہ لگتا ہے اور لوگ چونکتے بھی نہیں ہیں, لیکن بتدریج وہ صحیح استدلال کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی تربیت بھی ہوتی ہے, ان کے اندر شائستگی بھی رہتی ہے. اور یہ چیز اگر آپ پیدا کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے اندر اپنے بزرگوں کے بارے میں ایک سوء ظن پیدا ہوتا ہے. اب آپ نے کسی کی ایک عبارت نکال دی, کسی شخص کی کوئی ایک رائے سامنے رکھ دی, جو ہو سکتا ہے بہت مرجو ہو, جس میں بڑی غلطی ہو, جو کسی طرح بھی قابل دفاع نہ ہو, لیکن اس کے ساتھ اگر انہی بزرگوں کا آپ کام دیکھیں تو بہت غیر معمولی ہوتا ہے. آپ امام غزالی کو دیکھ لیں, آپ, میں کہتا ہوں, شیخ اکبر ابن عربی کو دیکھ لیں. میں فتوحات کے بے شمار مقامات آپ کو دکھا سکتا ہوں جن میں بعض بڑے نازک مسائل پر بہت عمدہ کلام انہوں نے کیا ہے. تو ہم ان کی جن چیزوں پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں, وہ تنقید بھی اس طرح سے کرنی چاہیے کہ آپ صحیح بات کو بیان کرتے ہوئے تقابل میں رکھ کے بتا دیں کہ یہاں پر دین کا نقطہ نظر یہ ہے. ان لوگوں کا جو کنٹریبیوشن ہے, ظاہر ہے کہ اس پس منظر میں کھڑے ہیں, وہ ہماری میراث ہے, ہمارے غیر معمولی بزرگ ہیں. ان میں سے پیغمبر کوئی بھی نہیں تھا. ہر ایک سے کوئی نہ کوئی غلطی, بلکہ بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سے بھی ہوتی ہیں. ہمارے بعد میں آنے والے ان کی تصحیح کرتے رہیں گے, لیکن تصحیح کا شائستہ مہذب طریقہ وہی ہے. میں نے اس میں کوئی خیر نہیں دیکھا, اور میرا اپنا تجربہ بھی یہی ہے. اس کی وجہ سے میں تو ایک طویل عرصے سے اب یہی کرتا ہوں کہ کسی چیز کی تنقید کرنی ہے تو بس استدلال کو بیان کر دیتا ہوں کہ یہ صحیح استدلال ہے, اس کے مقابل میں جو بات کہی جاتی ہے اس کے دلائل یہ ہیں, ان میں یہ خامی ہے. اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے ابھی حال میں, جو کچھ ہماری ابتدائی تاریخ میں ہوا, لیکن اس طرح کی کسی چیز کو موضوع نہیں بنایا. اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی غلطیوں کو بھی بیان کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. کہیں اگر ذکر بھی کیا ہے تو شائستگی کے ساتھ ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اس معاملے میں میرا زاویہ نظر یہ ہے. میں اسی طریقے کو صحیح سمجھتا ہوں, اسی میں خیر ہے.